नमस्कार, आज हम लोग ECC कोर्स के अंतर्गत जो बात कर रहे हैं, नीड्स एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, हमारा लेसन नंबर 3, नीड्स एंड राइट्स, जरूरतें और अधिकार बच्चों के। और आपको मैं फिर से याद दिला दूं, जब हम ECC की बात कर रहे हैं तो मैं पर्टिकुलरली बात करूंगी 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए। हालांकि हमें भी पता है कि बच्चे जो हैं हमारे, हम लोग उन्हें 14 साल तक के लिए बात करते हैं, तो डेफिनेटली जो राइट्स कुछ हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो आपके स्टार्टिंग से लेके बचपन से लेके 14 इयर्स तक, जब तक बच्चे बच्चे हैं, चिल्ड्रन एडल्ट नहीं हो जाते तब तक के लिए वो हैं। मगर जब भी आप अभी जब हम लोग चर्चा करें तो अभी जब हम बात करें तो जो बेसिक माइंड में रहना चाहिए वो ये है कि हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जो 0 to 6 इयर्स के बच्चों के लिए हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये राइट्स हमारे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी होते हैं। हमारे देश में भी जैसे कि सभी देशों की, पूरे विश्व में है, सब लोग जो हैं वो अपने देश के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कल्पना करते हैं। अच्छा करना का मतलब है कि उनकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ का जब बात आती है, उनकी फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक उनका डेवलपमेंट, फिर उनका मानसिक ग्रोथ, उनकी मेंटल डेवलपमेंट, फिर उनकी इमोशनल ग्रोथ, उनका संवेगात्मक जो है आपका विकास जो है वो मेन फोकस होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग पिछले पाठों में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जो बच्चे हैं वो किसी भी देश की जो है वो निधि होती है, किसी भी देश का वो भविष्य होती है। तो जितना हम बच्चों पे फोकस करेंगे, डेफिनेटली वही बच्चे कल को जो है वो हमारा एडल्ट बनेगा, वही बच्चा कल को हमारा यूथ बनेगा, और कल को वही बच्चे जो है हमारे देश की बागडोर संभालेंगे। तो जितने हेल्दी में तीनों एस्पेक्ट्स आएंगे, आपके फिजिकल, आपका मेंटल और आपका संवेगात्मक, आपका इमोशनल, तो तीनों, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास आपका जो जितना अच्छा होगा उतना ही स्वस्थ हमारा जो है बच्चा होगा। जितना स्वस्थ हमारा बच्चा होगा उतना ही डेवलप जो कोई भी कंट्री हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले कुछ सालों के साथ, तो देखिए हम लोगों ने बहुत विकास किया है हमारे देश ने। हम पर्टिकुलर भारत की बात कर रहे हैं, हमारे देश ने जो है बहुत डेवलपमेंट की है। जैसे कि हमारा जो शिशु मृत्यु दर था, मतलब कि जन्म लेते ही बच्चों की मृत्यु हो जानी या जन्म लेने से कुछ समय के बाद जो है बच्चे की मृत्यु हो जाना, वो जो है वो शिशु मृत्यु दर में काउंट होता है। तो क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारी एजुकेशन है, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारी स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट ने चला रखी है, तो जिनकी वजह से हमारा जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, उसमें कमी आई है। जो बच्चे का जीवित रहने की दर थी वो भी पहले से बढ़ी है। जो हमारा साक्षरता दर थी उसमें भी पहले से सुधार आया है। जो बच्चे कभी स्कूल जाते ही नहीं थे या स्कूल जाते थे और कुछ समय के बाद स्कूल को छोड़ देते थे, उस दर में भी कमी आई है। इतना सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ चीजें अभी भी बच्चों के लिए अपूर्ण जरूरतों में रह जाती हैं। मतलब कि कुछ जरूरतें बच्चों की अभी भी हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि कुछ जरूरतें बच्चों की पूरी नहीं हो पा रही हैं, इट डजंट मीन कि सभी बच्चों की पूरी नहीं हो पा रही हैं। मगर कुछ बच्चों की भी अगर पूरी नहीं हो पाती हैं, तो हमारे लिए वो मिशन में कहीं ना कहीं वो कमी दिखाता है। तो आज हम उन्हीं सब बातों की बात करेंगे कि बच्चों की जरूरतें क्या क्या हैं, उनकी अपूर्ण जरूरतें क्या क्या हैं, और उन जरूरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या राइट जो है बच्चों को दे रखे हैं, और उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो राइट्स बच्चों तक पहुंचे उसके लिए क्या क्या स्कीम जो है वो हमारी सरकार ने चला रखी है। हम लोग बात कर रहे हैं नीड्स ऑफ चिल्ड्रन की। तो आप देखिए, नीड्स ऑफ चिल्ड्रन में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपकी बात आ रही है कि वो चीजें जो आपका प्रेरणादायक अनुभव है, ताकि आपका जो बच्चे का विकास है वो ओवरऑल विकास, उसका संपूर्ण विकास जो है वो वहां पे हो सके। तो जो पेरेंट्स हैं या अदर केयर टेकर्स हैं, अदर केयर टेकर्स में आ जाते हैं जो ईसीसी के आपका स्टाफ है, आपके स्कूल में जब बच्चे जाएंगे तो स्कूल का जो स्टाफ है, आपका अड़ोस पड़ोस, आपके पीयर ग्रुप, जो भी बच्चे को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, उन पे प्रभाव डालते हैं, वो सारे के सारों को जो है वो थोड़ा सा जो वातावरण है वो इतना सूदिंग वातावरण वहां पे होना चाहिए ताकि बच्चों को जो है वो बच्चे जो है वहां पे अपना जो है ओवरऑल डेवलपमेंट, अपना संपूर्ण विकास वहां पे आराम से कर सकें। जब हम बात कर रहे हैं विकास की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो डेफिनेटली जो चिल्ड्रन हैं उनकी कुछ जरूरतें होती हैं। जरूरतों को हम अगर हम कैटेगराइज करें तो जरूरतों को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स में। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब मनोवैज्ञानिक, जो बच्चे के मन मस्तिष्क में एक अपने छाप छोड़ देती है, क्योंकि ये अर्ली चाइल्डहुड है, यहाँ की जो छाप होगी वो बच्चे के आगे आने वाले लाइफ स्पैन में वो छाप जो एक नींव का काम करेगी, जो आज उनके मन मस्तिष्क में किसी चीज के प्रति एक नजरिया बन जाएगा, तो डेफिनेटली जैसे जैसे वो बढ़ेंगे अंटिल अनलेस की उस नजरियों को चेंज करने के लिए कोई अलग से कोई बाह्य कारक वहां पे ना आया, तो वो उसी कारक के साथ जो है वो अपना पूरा लाइफ स्पैन जो है वो काट देंगे। फिर आती है आपकी हेल्थ नीड्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चों की आपकी हेल्थ और न्यूट्रिशन जो भी है आपका वो उनकी जरूरत है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे प्ले, अर्ली स्टिमुलेशन एंड लर्निंग नीड्स, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, कि आपका एजुकेशन। तो तीन आपकी बात होगी, एक आपका साइकोलॉजिकल नीड्स है, दूसरा आपकी हेल्थ नीड्स है, और थर्ड आपकी एजुकेशन नीड्स है। जब हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल नीड्स की, मनोवैज्ञानिक जरूरतें, तो मनोवैज्ञानिक जरूरतों को अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, आप भी अगर कहीं खुद को अभी बच्चों में कंसिडर करते हैं तो आप खुद सोचिए कि आपको क्या चाहिए। आपको सेफ्टी चाहिए, आप सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो खुद के लिए प्रोटेक्शन में कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, कई बार तो उनके साथ ये गलत हो रहा होता है ये चीज भी उन्हें पता नहीं होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि का विकास इतना नहीं हुआ है। तो उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का वहां पे पूरी तरह से ख्याल होना चाहिए। तो जो भी बच्चा है वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, किसी भी तरह मतलब रिलीजन से है, रीजन से है, कल्चर से है, ट्रेडिशन जो भी है उसका, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज बैकग्राउंड्स, वो उसकी क्या बैकग्राउंड है उसको ध्यान में ना रखते हुए हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए वो सिर्फ एक होना चाहिए कि बच्चे को जो ग्रोथ के लिए जो इन्वायरमेंट मिल रहा है वो सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, और वहां पे बच्चा खुद को सिक्योर फील करे, उसे किसी भी तरह से वहां पे डर नहीं लगना चाहिए। जहां पे बात सिक्योरिटी की आ रही है तो वो फिजिकली सिक्योर होना चाहिए, मतलब उसे शारीरिक कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसे मनोवैज्ञानिकली भी कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जब हम साइकोलॉजिकली की बात करते हैं तो उसके मन और मस्तिष्क पे भी किसी तरह का कोई भी प्रभाव जो है वो नेगेटिव नहीं पड़ना चाहिए। सिमिलरली इमोशनली संवेगात्मक भी वो सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जिन्होंने बचपन में अपने घर में जो है वो हिंसात्मक वातावरण देखा होता है, तो उनकी कहीं ना कहीं या तो उनकी प्रवृत्ति जो होती है वो खुद हिंसक हो जाती है, या वो इतने डरपोक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतना हिंसात्मक वातावरण देखा होता है, तो उसकी जो छाप उन पे होती है तो उन्हें हर चीज से डर लगने लगता है। जैसे कि मान लो किसी बच्चे का एक्सपीरियंस हो जाता है कि कोई उन्हें अटैक करता है, तो जब भी वो किसी अजनबी को देखेगा तो डेफिनेटली उसे एक डर फैल आएगा मन में कि कहीं ये मुझे अटैक ना कर दे, तो वो इनसिक्योरिटी, मैंने कहा कि जो बचपन में एक इमेज उसके दिमाग में बन जाएगी किसी भी चीज को लेके, डेफिनेटली वो कैरी करेगा उसे, क्योंकि अभी जो है वो कोरी स्लेट की तरह है, जो जो वहां पे लिखता चला जाएगा, जो जो वहां पे नोट होता चला जाएगा, वो एक नींव की तरह काम करेगा आने वाले टाइम के लिए। तो सबसे पहला जो नीड है, जरूरत है, वो ये है कि उन्हें सिक्योर, सेफ और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देना, और इसका आगे भी इम्पैक्ट होता है, इसलिए इन चीजों में जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। द सेकेंड थिंग, ये बात बच्चों की नहीं है, ये बात हम सब की है, लव एंड अफेक्शन। हम खुद जानते हैं, हम इतने बड़े हो गए हैं, उसके बावजूद भी हम उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनसे हमें प्रेम मिलता है, जिनसे हमें अपनापन मिलता है, जो हमें प्रोटेक्टेड फील करवाते हैं, जो हमें सिक्योर फील करवाते हैं। तो लव एंड अफेक्शन, ये तो बच्चे का जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जो भी बच्चा है, वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी है, सब जो है वो प्यार चाहते हैं। सिमिलरली द सेम विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ भी यही है। तो उनका जितना हम लोग अफेक्शनेट इन्वायरमेंट, मतलब जितना स्नेहमय आपका वातावरण होगा, उतना ही बच्चा जो है वो आपके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो स्कूल का स्टाफ है, चाहे वो स्कूल का टीचर है, चाहे आपका पीयर ग्रुप है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं। मगर जितना ज्यादा लव एंड अफेक्शन वहां पे होगा, उतना ज्यादा ही बच्चा जो है वो खुद को सिक्योर फील करता है, और उसी सिक्योरिटी में वो जो है कॉन्फिडेंट फील करता है, और इसी की वजह से जो है आपका वो कॉन्फिडेंट, आपका सोशली एंड वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल्स में ग्रो होता है। अगर यहीं पे जब बच्चे को लव जो है वो नहीं मिलता है, या अफेक्शन वो नहीं देख पाता है, बच्चा इग्नोर फील करता है वहां पे, अगर बच्चे को अनसिक्योर फीलिंग आती है, तो डेफिनेटली उसका जो मनोवैज्ञानिक और जो संवेगात्मक विकास है वो वहां पे हिंडर होते हैं, और उसी की वजह से जो है वो उसका जो सोशली वेल है, सोशली एडजस्टमेंट है, वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जब मुझे किसी अजनबी से एक बार कोई खतरा हो गया, तो मुझे सब अजनबियों से डर लग रहा है, तो फिर मैं सोशली किस तरह से दूसरे किसी अजनबी के साथ एक जो एक नेचुरल बिहेवियर होता है वो कर पाऊंगी, क्योंकि हर वक्त तो डर लगा रह रहा है, ठीक है ना। तो अनसिक्योरिटी वहां पे जो है वो सोशल जो हमारा डेवलपमेंट है उसको भी हिंडर करती है। तो इसलिए जो बच्चे लव और अफेक्शन नहीं मिल पाता, वो लोनली, अकेलापन फील करते हैं, इग्नोर्ड फील करते हैं, और फिर धीरे 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 जो है वो बिल्कुल ही अपने में सिमट जाते हैं। उनकी जो अपूर्ण जरूरत है प्रेम की, वो जो है कारण बन सकती है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो कारण बन जाएगी, मगर वो कारण बन सकती है मेल एडजस्टमेंट की, मतलब कि एक एंटी सोशल बिहेवियर की, या एक ऐसी पर्सनैलिटी वहां पे डेवलप हो सकती है जो कि एडजस्टेड पर्सनैलिटी नहीं है, जो एक हम कहते हैं कि हेल्दी चाइल्ड में वो डेवलप नहीं हो सकता है, ये क्योंकि ये एक फैक्टर है। इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये एक फैक्टर एक इन्फ्लुएंस डालेगा। अब इस फैक्टर की इंटेंसिटी कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि इस फैक्टर को कोई दूसरा फैक्टर, उसकी एजुकेशन, उसका आईक्यू, चीजों को समझने का नजरिया, वो चीजें वहां पे उनको कंपनसेट कर दें। इसलिए चांसेस हैं कि इनकी कमी में बच्चे का जो पूर्ण विकास सही से ना हो, मगर ये जरूरी नहीं है कि उसका पूर्ण विकास नहीं होगा, हो भी सकता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, बच्चों को समझना। और ये मैंने अभी आपसे बात करी कि जब हम बात करते हैं नीड्स की, मनोवैज्ञानिक नीड्स की, तो ये सिर्फ बच्चों की नहीं है, सबकी है। सब चाहते हैं कि सब जिस जो हमारे आसपास में हैं, जो हमारे अपने हैं, जो लोगों के साथ हम लोग बिलोंग करते हैं, वो हमें समझें और हम जैसे हैं वैसे ही उन्हें स्वीकार कर लें। तो बच्चों में जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक जैसे हों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई कम इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई ज्यादा सुंदर नैनक्ष वाला होगा, कोई कम सुंदर नैनक्ष वाला होगा, मगर जो जो जैसा है उसे वैसे ही अंडरस्टैंड करना और उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना और उसे ये समझाना कि वो जैसा भी है वो उसकी वैल्यू है। दैट वोज द कॉन्फिडेंस इन द चिल्ड्रन। वो बच्चों में जो है वो कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान डालता है और जिसकी वजह से जो है बच्चे का जो संपूर्ण विकास जो है वो अच्छे तरीके से हो जाता है। इसके अलावा देखो, मनोवैज्ञानिक जो है वो तो एक हेल्थ मेन इम्पैक्ट है ही है, जिसका हमारा जो भी बच्चे का एक नजरिया जो डेवलप होगा वो यही 0 to 6 ईयर्स में डेवलप हो जाएगा और उसके बाद जो है वो एक बेस बनेगा, एक नींव की तरह कार्य करेगा आगे की उसकी डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा दूसरा पहलू है कि आपका जो शरीर है वो कितना स्वस्थ है। अगर आपका शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं होता है तो हमने कई बार सुना है कि शरीर जो स्वस्थ आत्मा है वो स्वस्थ शरीर में निवास करती है। सेम विद द स्वस्थ मस्तिष्क, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। तो जो दूसरी इम्पोर्टेंट नीड है वो ये है कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए, खास करके बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान किया रखा जाए, क्योंकि 0 to 6 इयर्स के बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य का जो है वो अपने आप में जो है वो ख्याल नहीं रख सकते, अपनी देखभाल अपने आप पर नहीं कर सकते, वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर। तो ये परिवार की, माता पिता की और परिवार के परिवारजनों की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो जो है वो उनके स्वास्थ्य की और उनके न्यूट्रिशंस की जब हम बात करते हैं तो संतुलित आहार, मतलब कि जो भी एक एज ग्रुप में 0 to 6 इयर्स में जिस भी एज ग्रुप में बच्चा है, जैसे कि बाय बर्थ, फिर बर्थ के बाद, फिर 1 to 2 सालों में, फिर 3 साल में, 6 साल में, जो उनके न्यूट्रिशंस की जरूरतें हैं। देखिए, जो जन्म के बाद के बच्चे की न्यूट्रिशन की जरूरत है वो 5 साल के बच्चे की नहीं होगी, दोनों की अलग अलग है। तो डेफिनेटली वो परिवार के परिवारजनों को समझना पड़ेगा और उनकी जो जरूरतें हैं उसकी जरूरतों के हिसाब से ही जो है वहां पे उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि 0 to 6 इयर्स का बच्चा अपने आप में जो है वो अपनी देखभाल नहीं कर सकता। और जो फिजिकल एंड हेल्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फिजिकल हेल्थ हमारा जो शरीर का शारीरिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जिसके जो उसके लिए डिपेंडेंट है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, कुछ हेरिडिटरी है, कुछ इन्वायरमेंटल है, इनके बारे में डिटेल में कभी पढ़ेंगे, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम अपने पेरेंट्स से कैसे जीन्स लेके पैदा हुए हैं, दूसरा हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तीसरा हम लोग क्या खा पी रहे हैं, हमारा न्यूट्रिशन कैसा है और हम लोग जो हमारा भोजन है वो संतुलित है या नहीं है। इसके अलावा जो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज, खेलने कूदने के लिए वहां पे स्पेस है नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वहां पे मैटर करते हैं। तो यहाँ पे जिम्मेवारी ये भी बन जाती है कि साथ साथ में हम लोग ये भी ध्यान रखें कि जो आपके सारे फैक्टर्स हैं वो किसी ना किसी तरह से वहां पे मीट करें, वो अनमेट वहां पे ना रहें, वो अपूर्ण जरूरतें वहां पे ना रहें। तो जो आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे कि एज अप्रोप्रिएट उनका क्या वेट होना चाहिए, क्या भार होना चाहिए, एक नॉर्मल जो हेल्दी स्वस्थ बच्चा होता है उसके बारे में पता होता है। तो हम लोग जो है वो एक एज ग्रुप में जो उस चार्ट को देख के अपने बच्चे का स्वास्थ्य खुद जज कर सकते हैं, उसका भार और उसकी हाइट देख के, कि अगर वो नॉर्मल स्वस्थ स्वस्थ बच्चे के थोड़ा सा ऊपर नीचे है देन इट्स ओके, मगर कहीं अगर आपका लार्ज इट्स ए ह्यूज डिफरेंस इज देयर देन वी हैव टू थिंक कि क्या प्रॉब्लम वहां पे है। जब बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिलता है तो कुपोषण होता है, तो जो कुपोषण है उसको देखना हो और उसको जांचने के लिए जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो भी डेफिशिएंसी बच्चों में अगर पाई जा रही है तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स उनको देके उस डेफिशिएंसी को कवर किया जा सके। इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं 0 to 6 ईयर्स के बच्चे, उनके लिए समय समय पे किस एज ग्रुप में कौन सा टीका लगना है, किस बीमारी से बचने के लिए, वो कार्ड भी जो है वो आपके हेल्थ सेंटर में जब बच्चा का जन्म होता है तभी बन जाता है। बस आपको परिवार के लोगों को और उसके माता पिता को सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि समय समय पे वो टीके उसको लग जाए और बच्चे का टाइम टाइम से जो है वो मेडिकल चेकअप वहां पे होता रहना चाहिए, ताकि हमें ये पता लग जाए कि बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो सही दिशा में विकास उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो हमारा है दैट इज अ प्ले अर्ली स्टिमुलेशन एंड लर्निंग नीड्स एजुकेशन। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो नो डाउट कि बच्चों को एकदम से तो स्कूल नहीं सिखाया जाता, मतलब पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाता, तो सबसे पहले जो होता है वो एक बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे उठना बैठना एडुकेट जिसे हम कहते हैं, कि किस तरह से बैठना है, किस तरह से अपनी जो डेली नीड्स है उनको मीट करना है, जैसे अपने हाथ धोना, ब्रश करना, फिर फ्रेश होना, अपनी जो डेली नीड्स है उनको मीट करना, फिर उसके अलावा भी आपका जैसे कि खेल खेल में कुछ चीजों को सीखना, और फिर आपकी जो प्ले वे मेथड से कुछ कुछ बातों का सीखना। तो हमें जो इंश्योर करना है कि वहां पे जो हो कि इन सब चीजों की प्रॉपर वहां पे जो जरूरतें जो उनकी हैं वो वहां पे होनी चाहिए, तो वहां पे उनकी जब जितनी जो भी हमारी लर्निंग नीड्स है, बच्चे की जो भी लर्निंग नीड्स है, तो वो प्ले वे मेथड से होंगी, और वो कई बार प्ले सेंटर्स में होते हैं, या फिर अब गवर्नमेंट ने ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर्स भी खोल रखे हैं, जिसमें बच्चे को बेसिक जो चीजें हैं वो सिखाई जाती हैं, साथ साथ में जब 3 साल के बाद का बच्चा होता है तो उसे बेसिक चीजों के साथ साथ छोटा मोटा एजुकेशन से लेते वर्बल टर्म्स में भी सिखाया जाता है। इसके बारे में भी हम लोग अगले चैप्टर्स में चर्चा करेंगे। तो जो भी बच्चे हैं वो जो लर्निंग एनवायरमेंट है उससे रूबरू होने चाहिए, और उन्हें जो है जो उनकी एज एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज है, ध्यान रखिए कि जो उनकी आयु के उपयुक्त है वो वहां पे एक्टिविटीज जो है वो वहां पे उनको करवानी चाहिए। जहां पे हम लोग एज उपयुक्त की बात कर रही हूँ, आयु उपयुक्त की मैं जब बात कर रही हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 से 4 साल के बच्चे की क्या जरूरत हो सकती है, या वो ऐसा तो नहीं है कि कोई आपने लर्निंग मटेरियल उसको दिया, उसने उसको मुंह में ले लिया, उससे उसको हर्ट हो गया, तो आपको वो चीजें वहां पे ध्यान रखनी है, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो बच्चे के शारीरिक विकास के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्ले टाइम। क्यों? क्योंकि जितना बच्चा खेलता है उसी हिसाब से बच्चे का शारीरिक विकास होता है। तो हमें जो है वो ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे के लव इफेक्शन सिक्योरिटी सेफ्टी और उसके हेल्थ के साथ साथ उसके खेल और उसके एक्सरसाइज के लिए भी पूरे दिन में कहीं ना कहीं जो है वो आपके समय तालिका में उसके लिए भी समय जो हो वो हमेशा सुनिश्चित हो। ये तो हमारी नीड्स थी। अब है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि राइट्स और नीड्स में डिफरेंस क्या है। राइट्स और नीड्स, जरूरतें और अधिकार। अब नीड और राइट को मैं डिस्कस करूं, उसके अलावा मैं पहले आपसे बात कर लूं कि हम जरूरतों की बात कर रहे हैं। सरकार और की जो जिम्मेवारी होती है वो किसी भी बच्चे को विद रिस्पेक्ट टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन, रीजन, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, कुछ भी, मगर सब बच्चों की जो है जरूरतें पूरी होनी चाहिए। मगर हम बात कर रहे हैं जरूरतों की। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ए नीड एंड ए वांट्स। तो जो वांट है आपकी, चाह जो होती है, उसका कोई एंड नहीं है। तो जो चाह है वो डिजायरेबल है, वो नीड नहीं है, वो जरूरत नहीं है, मगर आपको मिलती है देन इट्स ओके। मगर जो जरूरत है, जैसे कि संतुलित आहार बच्चे को मिलना चाहिए, जरूरत है। बच्चे को एक सेफ सिक्योर वातावरण मिलना चाहिए, जरूरत है। बच्चे को जो है वो आसपास में खेलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए वातावरण मिलना चाहिए, जरूरत है। मगर चाह कुछ भी हो सकती है, बच्चे को महंगे महंगे खिलौने चाहिए, बच्चे को गाड़ी चाहिए, तो वो चाहें हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। फिर बात आती है नीड्स एंड राइट्स। तो जब हम बात करें नीड्स और राइट्स की, तो बड़ी सिंपल सी बात है, नीड्स एंड राइट्स जो है दे आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक्चुअली जरूरतें तो हमने कह दी कि ये बच्चों की जरूरतें हैं। अब वो जरूरतें पूरी हों या ना हों, इसका कैसे देखा जाए? तो बच्चों को ये अधिकार दे दिया गया कि वो उनकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। अब ये जरूरतें पूरी होना जो है वो बच्चों का अधिकार है। तो ये जरूरतें कौन पूरी करेगा? सरकार पूरी करेंगे, इन केस की अगर बच्चे की वो जरूरत किसी वजह से नहीं पूरी हो पा रही है। तो यूनाइटेड नेशन जो सम्मेलन हुआ था, उसमें भी उन्होंने बच्चों के अधिकारों के बारे में बात करी और उन्होंने कहा कि ये अधिकार जरूरी हैं ताकि छोटे बच्चों की देखभाल हो सके और उनको प्रोटेक्टेड जो वातावरण है वो दिया जा सके। आपके जो चिल्ड्रंस के नीड्स हैं और जो चिल्ड्रंस के राइट्स हैं वो आपस में बिल्कुल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और हम लोग जब बात कर रहे हैं नीड्स के, तो ऑल चिल्ड्रन 0 से 6 इयर्स के बच्चों की जब हम बात कर रहे हैं, तो सब बच्चों की कॉमन ही नीड्स है। सब बच्चों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और प्रोटेक्शन चाहिए। सब बच्चों को लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो ये ह्यूमन बीइंग्स की, या ये बीइंग्स की बात है कि आपका जो है सबको, सबकी जरूरतें जो एक जैसी होती हैं। तो उस केस में आपका जो है ऑल चिल्ड्रन हैव कॉमन नीड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। चाहे वो किसी भी जो आपका है, मतलब कि आपका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, चाहे आपका कोई कल्चर बैकग्राउंड है, चाहे आपका ट्रेडिशन कुछ भी हो, चाहे आपका रिलीजन कुछ भी हो, मगर सभी बच्चों की वही जरूरतें हैं। दे नीड अ प्रोटेक्टिव होम एनवायरमेंट, गुड फैमिली लाइफ, एडिक्वेट फूड, हेल्थ केयर एंड रिस्पेक्ट। तो ये जो दोनों हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है देर आर द राइट्स। अगर हम बात करेंगे कि ये हमें भी पता है कि ऑल चिल्ड्रन आर नॉट लकी टू हैव ए नॉर्मल लाइफ एंड नॉर्मल जो भी हमारी नीड्स हैं वो एकदम से उनकी पूरी हो जाए, उसके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी पॉलिसीज बना रखी हैं एंड प्लान्स उन्होंने बनाए हुए हैं, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पर पहले हम लोग बात कर लें कि क्या क्या राइट्स हैं बच्चों के। तो सबसे पहली बात है आपका राइट टू सर्वाइवल, जो आपका द राइट टू सर्वाइवल इंक्लूड्स द राइट टू लाइफ। जब हम बात कर रहे हैं लाइफ की, तो इट डजंट मीन कि सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार है, इट मीन्स कि उनको क्वालिटी लाइफ का अधिकार है। क्वालिटी लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छा भोजन, अच्छा वातावरण, अच्छी हेल्थ, अच्छा न्यूट्रिशन और एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, दैट शुड बी देयर, वो वहां पे होना चाहिए। उन्हें रिस्पेक्ट वहां पे मिलनी चाहिए, जो कि एक बच्चे की अभी हमने बात करी थी क्या नीड है उनकी, लव, अफेक्शन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो वो जो आपका राइट टू सर्वाइवल में जाएगा, इट आल्सो इंक्लूड्स द राइट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, नेम एंड नेशनैलिटी। जिस भी देश में वो पैदा होते हैं उस देश की नागरिकता उन्हें प्राप्त होती है विद द टाइम ऑफ द बर्थ। जैसे ही वो किसी भी देश में जन्म लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां की नेशनैलिटी उनको मिलती है। राइट टू प्रोटेक्शन, ये आपका अगला है। देखिए जो नीड्स है वही उन्हीं नीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो जरूरतें बच्चों तक मिले और बच्चों को मिले, उसके लिए राइट्स बनाए गए। तो राइट टू प्रोटेक्शन, अगर किसी भी तरह से घर में या घर के बाहर बच्चे को कहीं से भी एक्सप्लॉयट किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, तो बच्चे को पूरा राइट है प्रोटेक्शन के लिए। और ये 0 से 6 इयर्स के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी चर्चा करी कि कई बार जो है बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं, उन्हें इसके बारे में अभी ज्ञान नहीं है। तो ये परिवार के लोगों का या आस पड़ोस के लोगों का दायित्व बनता है कि वो ये देखें कि बच्चे जो हैं वो प्रोटेक्टेड हों, और अगर इनकेस वो प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो उन्हें उसके लिए जो है वो सरकार के द्वारा जो भी लॉज हैं उनके अंतर्गत पुलिस के पास जा सकते हैं और प्रोटेक्शन के लिए जो है वो वहां पे वो सहायता मांग सकते हैं। प्रोटेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन आपका, जैसे कि आपका वो आपका 14 साल से छोटे बच्चों का कहीं भी काम में वो अपशोषण नहीं हो सकता। सिमिलरली आप उसे जो है किसी ड्रग अब्यूज में बच्चों को नहीं ले सकते। तो देयर आर डिफरेंट लॉज जो इनको है, विच आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू प्रोटेक्शन। देयर आर डिफरेंट लॉज, वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट, फिर से डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में कि कौन कौन से लॉज जो हैं, पॉलिसीज जो हैं वो हमारे पास हैं। राइट टू डेवलपमेंट, इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि सब बच्चे को जो है वो एजुकेशन का राइट है, जबकि आपका कोई भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, कास्ट, कलर, कल्चर, आपका ट्रेडिशन, आपका रिलीजन, रीजन, कुछ भी है, कोई भी चीज जो है वो आपको आपके राइट ऑफ एजुकेशन से आपको अलग नहीं कर सकता। टू रिसीव द सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड केयर ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, टू तो आपका है। इसके अलावा है राइट टू पार्टिसिपेशन, हर एक बच्चे को जो है पार्टिसिपेशन का हक है, एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, जो भी उनका अपना जो भी उसके थॉट्स हैं, जो भी वो कहना चाहता है या करना चाहता है उसके लिए वो फ्री है। तो दीज आर द मेन राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए। अब इन नीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास राइट्स थे, जो बच्चे की जरूरतें हैं वो हमने पढ़ी, और उन जरूरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो जरूरतें बच्चों को पूरी हों और वो मिले, उसके लिए राइट्स बनाए गए। अब ये राइट्स जो है वो बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, या इन राइट्स के चलते जो है वो बच्चे को कैसे संपूर्ण विकास हो जाए, उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है वो प्लान्स में जब हम बात करते हैं तो कई बार स्कीम्स होती हैं, कई बार पॉलिसीज होती हैं, कई एक्ट्स होते हैं, तो हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में वन बाय वन। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है वो है आपका SSA, समग्र शिक्षा अभियान एंड इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन 2018। इसमें जो था कि जो बच्चे किसी भी कारण से स्कूल नहीं गए थे तो उन्होंने प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक जो है वो स्कूल एजुकेशन के लिए एक मुहिम चलाई थी। इसका जो मेन गोल था वो यही था कि स्कूल इफेक्टिवनेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्कूलिंग टू ऑल चिल्ड्रन, सब बच्चों के लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटी हो। नो डाउट कि सभी स्कूलों में ऐसा ही है, कोई भी बच्चा अगर स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाता है तो उसकी आयु के हिसाब से उसे जिस क्लास में होना चाहिए, तो अगर वो वहां नहीं है तो उसको कुछ रामडियल क्लासेस देके वहां पे उसको उस लेवल तक पहुंचाया जाता है, या फिर जो आपका स्टार्टिंग इयर्स हैं उसमें अगर आप रेगुलर स्कूलिंग करते हैं तो आप धीरे धीरे वहां पे अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। तो जो आपका राइट है ये एजुकेशन का, तो कोई भी स्कूल जो है वो डिनाई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में जो है एजुकेशन जो है वो आपकी फ्री है। इवन सिर्फ आपकी शिक्षा ही फ्री नहीं है, परंतु कुछ बच्चे जो सिर्फ अपना भोजन की तलाश में स्कूलों में नहीं आते थे और दिन भर कहीं यहाँ वहाँ काम करते थे, उनको भोजन की भी वहाँ पे उचित व्यवस्था की जाती है। बच्चों को वर्दी, बच्चों की किताबें, कॉपियां सब जो हैं वो फ्री दी जाती हैं, ताकि बच्चों की किसी भी तरह से कोई भी बाधा वहां पे बच्चों को बच्चों की शिक्षा लेने से ना रोक सके। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम जो था वो था कि जो आपकी क्वालिटी एजुकेशन है वो सभी स्टूडेंट्स को मिल सके, और जो सोशल और जेंडर गैप था स्कूल में, जैसे कि पहले, आज की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत पहले की अगर हम बात करें तो क्या होता था कि आपका जो लड़कियों की एजुकेशन थी तो पेरेंट्स जो थे वो इस सोच में रहते थे कि लड़कियों की एजुकेशन जरूरी नहीं है, लड़कों की एजुकेशन जरूरी है, लड़कों के लिए हम लोग पढ़ा लेते हैं, लड़कियों को रहने देते हैं। तो उस जेंडर गैप को कम करने वाला, फिर जो लोग गरीब थे वो अपने बच्चों को नहीं भेजते थे कि वो काम करेंगे, तो उसके लिए वहां पे मिड डे मील स्कीम लाई गई, तो उसके हिसाब से ताकि वहां पे बच्चों को और लाया जा सके। इसी के साथ थे हमारे नेशनल मिनिमम गाइडलाइंस फॉर सेटिंग हम अपने रनिंग क्रेचिस अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। तो जो वर्किंग वुमेन थे उनके लिए वहां पे जो है रनिंग क्रेचिस स्टार्ट किए गए, ताकि 6 मंथ से लेकर 6 साल के बच्चे को जो है वो वहां पे डाला जाए, ताकि उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वहां पे मिल सके, सेफ्टी प्रोटेक्शन, और क्योंकि वहां पे ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं तो वो जो पेरेंट्स जो वर्किंग है उनके बच्चों की वो वहां पे होलिस्टिक डेवलपमेंट वहां पे होती है। इसी की तरह से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 है, इसमें जो था आपका कि जो मैटरनिटी बेनिफिट था वो इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ पेड मैटरनिटी लीव फॉर फीमेल इम्प्लॉयज। जो आपकी वर्किंग वुमेन थी उनको पहले 12 वीक्स की मैटरनिटी लीव मिलती थी, जो कि बढ़ा के 26 वीक्स में कर दी गई, ताकि वो अपने बच्चों को जो है क्वालिटी टाइम दे सके घर पर, और साथ में जो है बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उनका अपना पूरा योगदान वहां पे दे सके। इसके अलावा चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन अटेनमेंट एक्ट है, जिसकी मैं पहले ही भी बात कर चुकी हूँ। हम लोग जब बात कर रहे थे राइट ऑफ प्रोटेक्शन की, तो उसमें मैं इसी की बात कर रही थी कि चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, इसके तहत कि 14 साल के नीचे जो भी बच्चा है उसे किसी भी तरह के किसी भी काम में नहीं लाया जा सकता, ना आप उसे घरेलू किसी काम में यूज कर सकते हैं, ना ही आप उसे जो है वो किसी फैक्ट्री या कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस ग्रुप में बच्चे के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है और बच्चे को वही वहां पे लेनी है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे कि विद रिस्पेक्ट टू ऑल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन, रीजन, आपका ट्रेडिशन, कल्चर जो भी था, उसके साथ साथ ये भी था कि RPWD जो भी आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, तो वो बच्चों की जो भी डिसेबिलिटीज है उनको भी ध्यान में रखते हुए उनकी भी नीड्स जो है वो पूरी की जाए, और उनके भी कोई भी जो आपका है वो इस तरह से उनको मतलब कि वो किसी भी तरह से ना तो शिक्षा से वंचित हो, ना ही किसी अधिकार से वंचित हो, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसको उसके अनुसार ही जो है वो शिक्षा का अधिकार वहां पे है। नेशनल प्लान फॉर एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 वहां पे आया था। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, जो कि हमारा जेंडर गैप था उसको फुलफिल करने के लिए, जो आपने देखा होगा भी कि भ्रूण हत्याएं में भी जो लड़कियां, जब पता लगती थी कि लड़कियां हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट ने वहां पे ये मुहिम चलाई कि एक तो पहले कि कोई ये चेक नहीं कर सकता कि कौन सा भ्रूण है, और उसके साथ साथ ना ही किसी तरह से अबॉर्शन का वहां पे कराया जा सकता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ में एक तो ये था कि भ्रूण हत्या भी रोक लगाई गई, साथ साथ बेटी पढ़ाओ अभियान पे भी वहां पे ज्यादा जोर दिया गया, ताकि वहां पे जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा पर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाए, उनकी प्रोटेक्शन में और उनकी जो आपका जो एजुकेशन है उसके लिए। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे थे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जैसे कि छोटे बच्चों को किसी भी तरह से अगर वो खुद को शोषित महसूस करते हैं या उसके प्रियजनों को लगता है कि वो कहीं शोषित हो रहे हैं, तो उसके लिए भी एक्ट है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन राइट्स के बारे में पता होना और इन राइट्स के बारे में सही जानकारी होके उन्हें कब हमें यूटिलाइज करना है उसके बारे में। देखिए नीड जो है आपकी, नीड के वजह से हमारे पास राइट्स हैं और उन राइट्स के लिए हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे लॉज हैं, आप उनके बारे में नेट पर पढ़ सकते हैं, बुक में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।